समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सभी श्रोताओं को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी रेणु कटारिया। नमस्कार रेणु।
नमस्कार मनोज, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। We bring to you our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we give you the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 5th of March. So, Manoj, let's begin with the headlines first.
जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रोजगार पर बजट पश्चात वेबिनार में भाग लेंगे। वेबिनार के प्रमुख विषयों में लोगों में निवेश, अर्थव्यवस्था और नवाचार शामिल है। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को भी संबोधित करेंगे। रोजगार सृजन सरकार के प्रमुख क्षेत्रों में से एक रहा है। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार ने नौकरियों में वृद्धि करने और रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के लिए कई कदम उठाए हैं। ये वेबिनार सरकार, उद्योग, शिक्षाविदों और नागरिकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा और परिवर्तनकारी बजट घोषणाओं को प्रभावी परिणामों में बदलने के लिए चर्चाओं को प्रोत्साहित करेगा। वेबिनार में विचार विमर्श का उद्देश्य टिकाऊ और समावेश विकास का मार्ग प्रशस्त करना, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में नेतृत्व तथा 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में काम करने वाले एक कुशल स्वस्थ कार्यबल का निर्माण शामिल है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
The Ministry of Panchayati Raj is set to launch its model women-friendly gram panchayats at a national convention in New Delhi today. This initiative is a part of the ministry's International Women's Day 2025 celebrations. The primary objective of the initiative is to establish at least one model women-friendly gram panchayat in each district. It will serve as a beacon for gender-sensitive and girl-friendly governance practices. Minister of State for Panchayati Raj, Professor S.P. Singh Baghel, Minister of State for Health and Family Welfare, Anupriya Patel, and other representatives from various ministries, departments, and international organizations like the United Nations Population Fund will take part in the event.
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड के नेतृत्व में बेल्जियम के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और स्वच्छ प्रौद्योगिकी, रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। कल एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाले यूपीआई के परिवर्तनकारी प्रभाव को भी साझा किया।
Information Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw asked students to be focused on their work and remain committed to the goal. Addressing the 56th convocation ceremony of Indian Institute of Mass Communication, IIMC, in New Delhi, Mr. Vaishnaw said, "Today, entire world of media is changing." He asked students to always keep nation first. Mr. Vaishnaw reiterated to make IIMC a world-class media institution with state-of-the-art facilities.
IIMC ka jo next version aane wala hai, where we want it to be world-class media university, jisme ki world ka best facilities yahan rahe, world ki best course curriculum mein ho rahe, aur world ki best industries ke saath iska tie-up ho.
Congratulating the graduating students, Mr. Vaishnaw emphasized that next version of IIMC will also include world-class curriculum and stronger collaborations with the media industry to meet the needs of a rapidly changing communication landscape. During the event, Mr. Vaishnaw conferred the postgraduate diploma to 478 journalism students of 2023-24 batch.
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने लंदन के 10 डाउनिंग स्ट्रीट में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने और लोगों में आपसी आदान प्रदान को बढ़ावा देने पर चर्चा की। बैठक के बाद विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कीर स्टार्मर को हार्दिक शुभकामनाएं साझा की। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री स्टार्मर ने यूक्रेन संघर्ष पर ब्रिटेन के दृष्टिकोण को साझा किया। बाद में डॉक्टर जयशंकर ने अपने ब्रिटिश समकक्ष डेविड लैमी से मुलाकात की और आगे की चर्चा के लिए अपनी उत्सुकता व्यक्त की। उन्होंने श्री लैमी के साथ भारत से आए उत्कृष्ट शोध छात्रों से भी मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये हमारी प्रतिभा और लोगों के बीच आदान प्रदान की एक ज्वलंत अभिव्यक्ति है और ये विद्वान निश्चित रूप से भारत ब्रिटेन संबंधों के महान समर्थक हैं। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने गृह सचिव यवेट कूपर से मुलाकात की और प्रतिभा के प्रवाह, लोगों के बीच आदान प्रदान तथा तस्करी और उग्रवाद से निपटने के संयुक्त प्रयासों पर चर्चा की। व्यापार और वाणिज्य विभाग के सचिव जोनाथन रेनॉल्ड्स के साथ अपनी बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते में प्रगति पर भी बैठक की।
In Telangana, the rescue operation at the Sri Silam Left Bank Canal or SLBC tunnel at Domalapenta in Nagar Kurnool district gained further momentum with restoration of the conveyor belt. Officials announced that the restoration of the conveyor belt has enabled the removal of 800 tons of debris an hour. Disaster Management Special Chief Secretary Arvind Kumar and Collector Badawat Santosh held a review meeting at the site assessing the rescue operation at the SLBC project. The authority said that excavation is underway in areas identified by groundbreaking penetrating radar with two escalators kept ready for assistance. The final components of the tunnel boring machine are set up to be cut using a gas cutter and removed through a loco train. The water inside the tunnel is being pumped out. And moving on to sports. In cricket, India stormed into the final of the ICC Champions Trophy 2025, beating Australia by 4 wickets in Dubai. We have a report.
Chasing a target of 265 last evening, the men in blue comfortably reached 267 for 6 with 11 balls to spare. KL Rahul sealed the victory in style by smashing a 6. Star batter Virat Kohli and Shreyas Iyer steadied the Indian innings with a crucial 91 runs partnership. Virat Kohli, who top scored with 84 of 98 balls, was named player of the match. Earlier in the match, Australia opted to bat first after winning the toss and posted a competitive total of 264 in 49.3 overs. Captain Steve Smith led the charge with a well-crafted 73, while wicketkeeper batter Alex Carey contributed 61. For India, Mohammad Sami claimed 3 wickets while Ravindra Jadeja and Varun Chakravarti chipped in with 2 wickets each. This marks the third consecutive time India has reached the ICC Champions Trophy final. In the second semi-final today, South Africa will take on New Zealand in Lahore. The winner of this high-stake encounter will face India in the final on Sunday. This is Deepmala Kaushik for Aaj Savere.
अब रुक करते हैं महानगरों के समाचारों का।
Yes, Manoj, I am beginning with Chennai Metro and ये वाली news काफी informative है. Chennai passengers travelling from southern districts to Chennai Egmore will face disruptions as several long distance trains will be halted at intermediate stations like Tambaram, Mambalam and Chengalpet. Work on the fourth line project between Chennai Beach and Egmore, scheduled between March 5th and 9th, will result in several trains being short terminated, partially cancelled, diverted or rescheduled. Express trains from Karaikudi, Mannargudi, Tirunelveli, Mandapam and Tuticorin will not reach Chennai Egmore as usual, forcing passengers to get down at Chengalpattu and Tambaram. Similarly, some trains from Hyderabad and Puducherry will also face short termination.
दिल्ली की खबर जी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल दिलशाद गार्डन स्थित गुरु तेग बहादुर जीटीबी अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल की स्थिति पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यहां का गोदाम करोड़ों रुपए के महत्वपूर्ण उपकरणों से पूरी तरह भरा हुआ है, जिनका उपयोग नहीं होता और व्यर्थ जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की पूर्व दिल्ली सरकार के नेतृत्व में यह हाल केवल एक अस्पताल की ही नहीं बल्कि कई अस्पतालों की है। दिल्ली की एक और खबर
जी।
आम आदमी पार्टी ने कल दिल्ली सरकार द्वारा राजधानी की महिलाओं को 2,500 रुपए देने के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी के नेतृत्व में पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ता सड़कों पर तख्तियां लेकर मौजूद थे। इस अवसर पर श्रीमती आतिशी ने कहा कि भाजपा ने कहा था कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजधानी की महिलाओं को 2,500 रुपए की पहली किस्त दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आज आम आदमी पार्टी इंतजार कर रही है कि दिल्ली सरकार अपने वायदे के अनुसार समय रहते ये राशि प्रदान करेगी या नहीं।
Moving on to Bengaluru, the Agriculture Grand Challenge Program of CCAM Tech Center for Agri Innovation is coming with its third edition in partnership with the Karnataka Innovation and Technology Society in the state. CCAM is India's premier biotechnology research and innovation hub, leading in deep tech agri innovation ecosystem. Agri Grand Challenge 3rd will make an effort to usher in agri revolution through scientific solutions for problems at the grassroots. The Grand Challenge call for science-based solutions to address specific problem across agri and allied sectors. Those coming out with solutions that resolve challenges inflicting the agriculture sector can take up the Grand Challenge. A national and globally represented expert core committee will identify the entries for the challenge. Those with prospects will receive investment funding of up to 50 lakh rupees and get assistance for the field trials of their ideas and technology. India is largely an agrarian economy, contributing just 18.2% of the GDP to the Indian economy.
अब महाराष्ट्र की खबर
जी।
महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन 6,486 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांगे पेश की। वित्त विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पूरक मांगे पेश की, जिनमें ग्रामीण विकास विभाग के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपए शामिल है, जबकि उद्योग, बिजली और श्रम विभाग के लिए 1,688 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। 590 करोड़ रुपए नगर विकास विभाग और 412 करोड़ रुपए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए मांग की गई है। महाराष्ट्र की एक और खबर, महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री का पिछले साल दिसंबर में निधन हो गया था। विधानसभा में अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शोक प्रस्ताव पेश किया, वहीं परिषद में भी सभापति राम शिंदे ने ये प्रस्ताव पेश किया। अपनी सभा में श्री नार्वेकर ने डॉक्टर सिंह को एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के रूप में याद किया, जिन्होंने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की और विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि जहां डॉक्टर सिंह की नीतियों ने भारत में व्यापार और उद्योग को नई दिशा दी, वहीं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, सूचना का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम और खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसी योजनाओं की शुरुआत के माध्यम से उनका लोगों से जुड़ाव मजबूत हुआ। बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों ने अपने पूर्व सदस्यों को भी श्रद्धांजलि दी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। उनकी स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा गया।
And the last news that I have is from Hyderabad Metro, Manoj. Telangana Chief Minister A. Revant Reddy has urged the centre to immediately release long pending dues of over 1,468 crore rupees meant for the supply of rice to the Food Corporation of India during the 2014-15 Kharif season. He called on Union Minister for Food Prahlad Joshi in Delhi along with State Civil Supplies Minister N. Uttam Kumar Reddy. An official release stated that the chief minister brought to the attention of the union minister that the pending dues were related to the additional levy collection which was borne by the state government and had remained pending for 10 years. He also requested Joshi to release the arrears of over 343 crore rupees for the supply of rice from May 2021 to March 2022 and in April 2022 under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. The Chief Minister appealed to the Union Minister to release pending dues of over 79 crore rupees for rice distribution under National Food Security Act or NFSA from June 2021 to April 2022 and extend the CMR deadline for handing over rice to FCI by at least 4 months instead of 1 month to avoid hurdles in the supply. And now we go to Kolkata ki news. Ke liye.
जी, जी. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगले महीने बांग्ला नववर्ष के दिन कोलकाता के कालीघाट मंदिर में स्काई वॉक का उद्घाटन करेंगी। इस वर्ष 14 अप्रैल को बांग्ला नववर्ष है। ये स्काई वॉक श्रद्धालुओं को कालीघाट मंदिर में बहुत आसानी से प्रवेश करने में सहायक होगा। और अब महानगरों के मौसम का हाल जानते हैं। पहले दिल्ली के मौसम की बात। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में दिन के समय तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की गई है। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में आसमान साफ रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में आसमान साफ रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम की खबरें जानते हैं रेणु से।
थैंक यू मनोज। चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 24 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 35 डिग्रीज। बेंगलुरु इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 20 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 33 डिग्रीज। एंड हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद हेज। The temperature will hover between a minimum of 20 degrees and a maximum of 36 degrees Celsius.
और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 5 मार्च है। देश और दुनिया के इतिहास में 5 मार्च कई कारणों से महत्वपूर्ण है। आइए नजर डालते हैं।
Yes, it is a very important day today as in the year 1851 the Geological Survey of India or the GSI was established. On the same day, that is 5th of March in the year 1923, Montana and Nevada became the first states to enact old age pension laws. In 1931, on this day, Gandhi-Irwin Agreement was signed and marked the end of a period of civil disobedience or satyagraha in India against the British rule that Gandhi and his followers had initiated with the Salt March. And on the same day in the year 1936, actors Victor McLaglen and Betty Davis won Academy Awards for Mutiny on the Bounty at the 8th Academy Awards.
आज ही के दिन 1997 में भारत तथा 13 अन्य देशों ने इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के गठन की घोषणा की। और 1999 में आज ही के दिन आजाद देश के राष्ट्रकुल के कार्यकारी सचिव बोरिस बेर्नोवस्की की बर्खास्तगी हुई। आज ही के दिन 1999 में फिल्म अभिनेता सुनील दत्त ने कोलंबो से अपने 17 सदस्यीय दल के साथ दक्षिण एशिया की 13,000 किलोमीटर लंबी सद्भावना यात्रा का शुभारंभ किया। 2001 में आज ही के दिन कोलंबिया के राष्ट्रपति परुत्राना 4 दिवसीय यात्रा पर भारत आए। और आज ही के दिन 2002 में राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ।
And if we go a little towards the back, I'm talking about the year 1980, Manoj. Mm. Earth satellites recorded gamma rays from remnants of supernova N49. And thoda sa aur piche chale jaye agar hum in the year 1959, actors Susan Hayward and David Niven won Golden Globe Awards for The Defiant Ones at the 16th Golden Globes.
Susan Hayward, and I Want to Live.
David Niven.
आज ही के दिन 2007 में अर्जेंटीना ने भारत द्वारा अदालती कार्यवाही के लिए क्वात्रोची के प्रत्यर्पण दस्तावेज स्वीकृत किए और 2008 में आज ही के दिन भारत ने समुद्र से जमीन पर हमला करने वाले ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया और 2009 में आज ही के दिन भारतीय उद्योगपति विजय माल्या ने 18 लाख रुपए में बापू की विरासत को खरीदा। इफ्को 1 करोड़ टन उर्वरक की वार्षिक बिक्री करने वाली विश्व की पहली कंपनी आज ही के दिन 2009 में बनी। आज ही के दिन 2009 में बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने 48 परोपकारी दिग्गजों की लिस्ट में टेलीकॉम किंग सुनील मित्तल और प्रवासी व्यापारी अनिल अग्रवाल समेत 4 भारतीयों के नाम शामिल किए।
हाँ जी, मेरे पास हिस्ट्री के इवेंट्स खत्म हो चुके हैं, सो लेट्स गो ऑन।
तो अब चलते हैं अगले सेगमेंट पर। याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका आज जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है।
Yes, today we are paying tributes to Patsy Cline, who was an American country music singer. She is regarded as one of the most influential vocalists of the 20th century and was one of the first country artists to cross over into pop music. The Time magazine writer Richard Corliss called her voice bold, and her voice has also been praised for its display of emotion. So here we are listening into this song, Crazy, which was released in the year 1961.
You'd love me as long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new.
आज पुण्यतिथि है जलाल आगा की। उनका जन्म 11 जुलाई 1945 को मुंबई में हुआ था। वे बॉलीवुड फिल्मों के अभिनेता और निर्देशक थे। वे लोकप्रिय हास्य अभिनेता आगा के बेटे थे। जलाल ने फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे से अभिनय की पढ़ाई की। उन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में अपनी फिल्मी यात्रा शुरू की और 1960 की सर्वकालिक हिट फिल्म मुगले आजम में युवा जहांगीर की भूमिका निभाई। उन्होंने बॉम्बे टॉकी, गांधी किम और द डिसीवर्स जैसी अंग्रेजी भाषा की फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने गूंज नामक एक बॉलीवुड फिल्म लिखी और निर्देशित की जो 1989 में रिलीज हुई। उनकी आखिरी फिल्म 1998 की फिल्म बदमाश थी।
महबूबा 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 गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं मैं और तू।
Some people are so very well known for their the kind of acting and jo gaane unhone movies mein gaaye unke liye. So today we are also paying tributes to P. Nageshwar Rao, popularly known as Pithapuram Nageshwar Rao, who was an Indian playback singer known for his contributions to Telugu cinema, particularly in comedic songs. He gained popularity in the 1950s and 1960s for his unique voice and his performances. और यहाँ पे क्योंकि हमने mention करा है कि उनकी बहुत ही unique voice थी मनोज, तो क्यों ना हम ये गाना सुन ले जो कि actually बहुत ही unique उनकी voice जी, 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 जी. बताता है।
దయ్యమండి
एंड मनोज आपको पता है पीठापुरम नागेश्वर राव अर्न द अफेक्शनेट टाइटल आंध्रा रफी फॉर हिज यूनिक वॉइस।
सुन के भी ऐसा लग रहा है रेणु जी।
जी
आज जयंती है प्रसिद्ध ख्याल गायिका गंगूबाई हंगल की। उनका जन्म 5 मार्च 1913 को धारवाड़ कर्नाटक में हुआ था। भारतीय शास्त्रीय संगीत के किराना घराने का प्रतिनिधित्व करने वाली गंगूबाई हंगल ने जातीय बाधाओं को पार कर संगीत के क्षेत्र में आधे से अधिक सदी तक अपना योगदान दिया। उत्तरी कर्नाटक के धारवाड़ जिले ने हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में देश को कई नामी गिरामी नाम दिए। उन्हें कर्नाटक संगीत नृत्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी की सदस्यता, दीनानाथ प्रतिष्ठान, माणिक रत्न पुरस्कार, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।
Beautiful. And today is the birthday of John Frusciante, who is an American musician and guitarist of the Red Hot Chili Peppers, having been with the band across 3 stints. He has released 11 solo albums and 7 EPs, ranging in style from acoustic guitar to electronic music. He was inducted into the Rock and Roll Hall of Fame as a member of the Red Hot Chili Peppers in 2012. Or Manoj, Rolling Stone named Frusciante among the greatest guitarist of all time. So yahan par thoda sa hum unke guitar sun lete hain.
आज जन्म दिवस है भारतीय अभिनेता, निर्देशक, निर्माता, डबिंग कलाकार, गायक नासर का। उनका वास्तविक नाम मोहम्मद हनीफ है। उनका जन्म 5 मार्च 1958 को तमिलनाडु के पलूर में हुआ है। वे मुख्य रूप से तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्म उद्योग में काम करते हैं। उन्होंने कुछ कन्नड़, अंग्रेजी, हिंदी और बांग्ला फिल्मों में भी काम किया है। दक्षिण भारतीय भाषा की फिल्मों के अलावा उन्होंने चाची 420, फिर मिलेंगे, निशब्द, राउडी राठौर, साला खड़ूस और सीरियस मैन जैसी हिंदी भाषा की फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने बाहुबली द बिगनिंग और बाहुबली 2 द कंक्लूजन फिल्मों में बिज्जल देव की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए सुनते हैं उनका एक संवाद।
उस दिन भी यही हुआ, मेरा राज सिंहासन मेरे छोटे भाई को दे दिया गया था और आज मेरे बेटे का राज सिंहासन मेरे उसी भाई के बेटे को दिया जा रहा है। अब मेरा बेटा, मेरे बेटे का बेटा और उसके बेटे, क्या हम सिर्फ गुलामी करते रहेंगे?
Today is the birth anniversary of Alik Padamsi, who was an Indian theatre personality and ad filmmaker. He played Muhammad Ali Jinnah in the 1982 British period film Gandhi. Besides being involved in Indian theatre as an actor and producer, Padamsi was an advertising professional who once headed the advertising company Lintas Bombay.
आज जन्म दिवस है अभिनेता, पटकथा लेखक और फिल्म निर्देशक सौरभ शुक्ला का। उनका जन्म 5 मार्च 1963 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ है। वे हिंदी, तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम करते हैं। उन्हें सत्या, नायक, द रियल हीरो, युवा, लगे रहो मुन्ना भाई, बर्फी, जॉली LLB में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है।
3 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है इस देश के अंदर
और कुल मिलाकर जज कितने?
21,000।
यानी देखा जाए तो 1,00,000 लोगों पर एक जज।
डेट में डेट पड़ती रहती है, लोग आते रहते हैं, हताश होकर घर जाते रहते हैं, लेकिन फिर भी आज भी हिंदुस्तान में जब कहीं दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है ना, कोई विवाद होता है, तो एक दूसरे से क्या कहते हुए पाए जाते हैं? आई विल सी यू इन कोर्ट।
आज जन्म दिवस है बांग्ला फिल्म और टेलीविजन अभिनेता अर्जुन चक्रवर्ती का। उनका जन्म 5 मार्च 1990 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ है। उन्हें बांग्ला संगीतमय टेलीविजन श्रृंखला गानेर ओपारे में गोरा के चरित्र चित्रण के लिए जाना जाता है। वे एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनका बांग्ला सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़ाव रहा है। उन्होंने 2012 में सुदेशना रॉय और अभिजीत गुहा की फिल्म बापी बाड़ी जा से पर्दे पर डेब्यू किया। और अब समय है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग एंड हैव अ सुपर्ब डे। नमस्कार।